जी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे लिंक दे दें टेस्ट का एक दफ़ा फिर से, एक क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट का कर लेते हैं, बाकी अगर किसी क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको कोई मसला होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे, मगर थ्रू आउट दूसरा पूरा टेस्ट हम नहीं देख सकते क्योंकि फिर हमारा रिव्यू का टाइम नहीं रहता। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे टेस्ट लिंक दे दें। फिर क्वेश्चन नंबर 15 था गालिबन, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद नहीं होते ज़ुबान तो मैंने एक दफ़ा लिखे होते हैं, तो ज़रा सिर्फ उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई थी, उसके अलावा फिर आप लोग देख लें कोई क्वेश्चन अगर डिस्कस करना तो फिर हम वो कर लेते हैं जी। लेकिन मुझे यहाँ पे लिंक देंगे तो फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी क्योंकि मैं एक दफ़ा टेस्ट लिखती हूँ मुझे टेस्ट याद नहीं होता जी। बाकी भी सब लोग खोल लें अपने अपने टेस्ट, अपनी ईमेल्स, और इंशाल्लाह व ताला फिर हम उसे देख लेते हैं। और आज हम इंशाल्लाह किताब निकाह का कोशिश करेंगे कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें क्योंकि काफ़ी हम आगे जा चुके हैं और फिर ये रिव्यू में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं जी। को यहाँ पे लिंक दे दे जी, एडमिन में से कोई लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दें ताकि सभी लोग खोल लें इंशाल्लाह टेस्ट। किसी और के पास अगर लिंक है तो वो दे दें जी। हमने कहा था ना कि हम इंशाल्लाह ताला ये टेस्ट को ही मुकम्मल करेंगे, लेकिन अब चूंकि वक्त नहीं इतना होता जी। बाकी भी लोग इसे ओपन कर लें इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी अमल को हम तब करेंगे, कब करेंगे? तब करेंगे हम जब कि हमें उस बारे में वाज़े नस मिल जाए कि इसका हुक्म उन्होंने हमें भी दिया है। अब ये बात जो थी क्लास में आ चुकी थी और नस का लफ्ज भी आ चुका था, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं कोई चीज समझ आती क्लास में से तो उसी वक्त पूछा करें कि ये क्या लफ्ज है, ठीक है? क्योंकि ये अगर आप लोग रिकॉर्डिंग्स में भी जाके देखें तो नस का लफ्ज लिखा हुआ है, नस का लफ्ज कहा गया। और मेरे ख्याल में क्लास में बहुत सारे लोगों को नहीं समझ के नस क्या चीज़ होती है। सोचें टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको टेस्ट ना दिया जाए तो मेरा ख्याल में आप इसी तरह फिर कोई समझे बगैर भी चलते फिरते रहेंगे, क्योंकि टेस्ट की तैयारी करते वक्त भी नहीं आपने देखा कि नस क्या है। तो नस का आज मैं आपको एक दो लफ्ज़ों में सिर्फ उसको बता देती हूँ कि वाज़े हुक्म। नस का लिख लें कहीं मोटा मोटा बड़ा बड़ा, नस वाजे हुकम, ठीक है? वाजे हुकम। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी अमल को हम तब करेंगे जब हमें वाजे नस मिल जाए कि उसका हुक्म उन्होंने हमें भी दिया है। अब मिसाल के तौर पे मसलन कोई भी आप कोई एक हुक्म, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल ले लें, मसलन है कि तहज्जुद पढ़ने का, वो तो खैर उन्होंने हमें भी हुक्म दिया, लेकिन मसलन कोई ऐसी बात कि जिसका हमें हुक्म नहीं दिया, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, हमें वाज़े हुक्म नहीं मिला, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, तो हम उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे ये बताएं पहले। कोई हुक्म नहीं आपने दिया, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम करते हैं, तो क्या हम उसको करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, मिसवाक का भी हुक्म दिया हुआ जी। इसका जवाब मुझे आप लोग सब बताएं, सब लोग बताएं, हर एक की मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल है, हमें मिलता है वो हदीस में, सीरत में, इसमें हमें ये मिलता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, लेकिन हमें कोई हुक्म नहीं मिलता कि मेरी उम्मत तुम ये अमल करो, तो हम करेंगे या नहीं करेंगे? वी कैन डू, नहीं, वी शुड डू और वी शुड नॉट डू। आप लोगों के फर्क फर्क जवाबात से मुझे ये पता चल रहा है कि आपको अभी तक भी नहीं पता, नहीं अफजल नहीं, आप मुझे बस बताएं कि करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे, शाबाश, ये किसने जवाब दिया? यू कैन अनटिल स्टॉप्ड, ये है सही जवाब। ठीक है, जब तक रोका ना जाए, गुड, शाबाश अमरीन, जब तक रोका ना जाए उस वक्त तक आप लोग वो अमल करेंगे। जैसे रोका गया सोमे विसाल से तो हम रुकेंगे, अगर नहीं रोका गया तो जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं उसको आप करेंगे। जितनी भी सुन्नतें हैं, मिसाल के तौर पे क्या सुन्नत आप मुझे कोई बताएं, कोई भी सुन्नत हो, मसलन शाबान के रोजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रखते थे, ठीक है, अब क्या हम करेंगे या नहीं करेंगे? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अगर फॉर एग्जांपल कोई इसकी हदीस नहीं है कि आपने फरमाया हो कि आप करो, आप भी कसरत से रोजे रखो, लेकिन जब हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रखते हैं तो हम रखेंगे। अगर हम सुन्नत की, जैसे इन्होंने कहा, हम सुन्नत की पैरवी करते हैं तो हम रखेंगे। बस हमें पता चल गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोजे रखा करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देख के हमने क्या किया, हमने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। ये है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि नहीं ये सिर्फ अमल खास मेरे लिए है, तुमने नहीं रख करना, तब हम रुकेंगे। जब हमें ये वाज नस मिल जाए, ये हमें नस मिल जाए, ये हमें हुक्म पता चल जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नहीं तुमने ये काम मेरा, ये सिर्फ मेरे लिए है, जैसे सौमे विसाल सिर्फ मेरे लिए, तो तुमने ये काम नहीं करना, तब हम उससे रुकेंगे। अदरवाइज हम उसको सुन्नत समझ के खुद ब खुद करेंगे। चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात को थोड़ी कहते थे तुम ये भी करो, ये मैं कर रहा हूँ, ये भी करो, तुम, मैं ये कर रहा हूँ, तुम ये भी करो। आपने देखा नहीं सहाबा क्या करते थे, जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं रुके, हालांकि वो तो कोई इतनी बात भी नहीं थी, वो तो कुछ ऐसा नहीं था कि कोई वो सुन्नत है, हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे कोई किसी वजह से रुके और रफा हाजत के लिए रुके, लेकिन वो उस पर भी रुकते थे। ठीक है, बट ही डिडंट ही टेल अस नो डोंट फास्ट आफ्टर 15 शाबान सो वी डोंट ट्राई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कसरत से शाबान में रोजे रखते थे, जब हमें हुक्म मिल गया ये वाजे कि 15 शाबान के बाद आप अपनी रमजान की तैयारी करो, उसके अंदर आप बेहतर है कि इस वक्त फिर ना रोजे रखें, क्योंकि रमजान की तैयारी करनी, अनलेस किसी के फर्ज रोजे छूटे हुए हैं तो वो रखना चाहता है, तो अदरवाइज उसके बाद से बेहतर है कि अपनी रमजान की तैयारी किया, तो फिर हम रुक जाएंगे क्योंकि हमें वाजे हुक्म मिल गया। यानी रुकने में हम हुक्म देखेंगे, करने में नहीं हुक्म देखेंगे। अगर उन्होंने तो नहीं कहा कि पानी बैठ के पियो, मसलन अगर उन्होंने नहीं कहा होता, बस वो बैठ के पीते हैं, हमें उन्होंने नहीं कहा कि आप लोग बैठ के पियो, वैसे तो इसकी भी हदीस है कि बैठ के पियो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, लेकिन जब हमने सीरत में पढ़ लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी, तो हम वो काम करते हैं या करेंगे या हमें करना अलाउड है, जब तक कि हमें मना का ना पता चल जाए। यानी हमने क्या देखना है कि कौन सी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की और हमें मना की, तब हम वो सुन्नत नहीं करेंगे। वरना सुन्नत में क्या होगा, जो पता चल गई वो एज इट इज हम कर लेंगे। ये बात समझ आई कि नहीं? अब आप क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी अमल को जब हम कहीं पढ़ेंगे, तो अब मैंने नहीं करना इसलिए कि जब मुझे वाज़े नस मिल जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये करो, तो फिर मैं करूंगी, वरना मैंने नहीं करना। ये ऐसा तो नहीं है, हमें हुक्म नहीं चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तुम भी ये करो, जब उन्होंने कर लिया तो वो हमारे लिए सुन्नत है, फिर वो करना हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा है। अगर कुछ मना करना होता तो फिर वो फरमा देते कि नहीं मेरे, ये मेरे लिए है सिर्फ, मसलन है कि मैं अपनी अम्मी को कोई काम करते हुए देखूं तो हम भी वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। अब अम्मी ने हर काम में तो नहीं कहा हुआ, ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रही ताकि आपको समझ थोड़ी आ जाए कि अम्मी ने हर काम में नहीं कहा हुआ कि भाई बेटा जैसे मैं ये खाना पकाती हूँ तुम वैसे पकाओ, ये तो आम जिंदगी की, माँ कोई वो नहीं है, मैं कोई नाउज़ बिल्ला कोई रोल मॉडल या उसके नहीं कह रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए रोल मॉडल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि उसवा हसन है, इसको फॉलो करो। तो अम्मी आप जिस तरह काम करती थी मैं भी वैसे करने लगी, अम्मी जैसे खाना बनाती थी मैंने भी करने, लेकिन अम्मी ने, हम हर काम में अम्मी को देखते रहे और वैसे करते रहे, लेकिन अम्मी ने इस काम में कहा था कि बेटा ये काम मैं करती हूँ लेकिन मैं इस वजह से करती हूँ, मैं बैठ के नमाज इस वजह से पढ़ती हूँ क्योंकि मेरी घुटनों में दर्द है, लेकिन बेटा तुम बैठ के नहीं पढ़ना, इसमें मेरी इतिबा नहीं करना, इसमें मुझे फॉलो नहीं करना, बाकी ठीक है चीजों में ठीक है, लेकिन जो जो अम्मी ने मना कर दिया तो फिर अब मैंने नहीं उसको करना। तो इस एग्जाम्पल से समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम को हम देखेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे, लेकिन जिस काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया ये नहीं करना, जो ये मैं मेरे लिए है सिर्फ खास स्पेशल मेरे लिए अल्लाह की तरफ से, ये काम तुमने मेरा फॉलो नहीं करना, तो वो नहीं इसीलिए तो है कि हर काम में आप फॉलो करोगे, जिस काम में वो मना कर देंगे उसमें सिर्फ बाज आओगे। अच्छा, सो सुनना भी से इट्स लाइक फॉर राइट वट एवर ही गेव अस हुक्म वी हैव टू डू, यहाँ पे हुक्म की नहीं बात आ रही, यहाँ पे बात आ रही कि उनकी चीज़ों को देख देख के फॉलो करना। ऑन द अदर हैंड सम थिंग्स ही डिड इट बट हमें नहीं बोला, वी विल डू दैट टू, यस यू विल डू दैट टू, हमें वो नहीं बोला लेकिन वो उनकी सुन्नत है, हम कहेंगे कि ये उनकी सुन्नत है। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा कि अब ये कहने की बात नहीं, इसको लेके कहीं हम यही ना शुरू हो जाए कि हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा पसंद था, तो सुन्नत एक हो गई। अब उन्होंने हमें ये तो नहीं कहा तुम मीठा खाया करो, लेकिन अब जब हम मीठा कभी खाने लगे हैं तो दिल्ली दिल में मुस्कुरा दें कि मेरे नबी को भी मीठा बड़ा पसंद था, मगर ये नहीं था कि वो हर खाने के बाद डिजर्ट जरूर खाते थे, स्वीट डिश जरूर होती थी, क्योंकि उनके तो वहां पे ऐसा कोई था ही नहीं सिस्टम के कोई स्वीट डिश का कॉन्सेप्ट हो। और इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात बता रही हूँ, मीठे के पीछे ना पड़ जाना आप, अब सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस तरह से कोई चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें पता चलती है तो हम उसको उसकी इत्तेबा करें, हमें उसके अंदर ये नहीं इंतजार करना कि वो जब हमें कहेंगे, अगर उन्होंने नहीं कहा तो हम तो नहीं करेंगे, नहीं, मना करने में आप उनके मना करने का इंतजार करें, करने में इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, अब आए इसकी तरफ, अब क्वेश्चन क्या कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी अमल को हम क्या तब करेंगे जब हमें वाज़े हुक्म मिल जाए कि उसका हुक्म उन्होंने हमें भी दिया कि तुम भी करो, तो फिर हम करेंगे, फिर तो हम बहुत सारे कामों से रुक जाएंगे, हम कहेंगे ये तो उन्होंने हुक्म नहीं दिया, ये तो उन्होंने नहीं कहा हमें, वो तो खुद करते थे लेकिन हमने तो नहीं करना। ऐसे नहीं है, ये बात नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी अमल को हम तब करेंगे जब हमने हमें पता चल गया कि उन्होंने किया है, हमें वाज़े नफ्स की जरूरत नहीं है, वाज़े यानी नफ्स का मतलब क्या, वाज़े हुक्म की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी अमल को हम तब करेंगे जब हमें वाज़े नफ्स मिल जाए कि इसका हुक्म उन्होंने हमें भी दिया है, यस या नो बताएं, क्या तब करेंगे? नो, राइट, अब आपको मुझे लगता है कि समझ आ गई है। अल्लाह अकबर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब और कोई क्वेश्चन मुझे बताइए वरना हम आगे रिव्यू पे चलते हैं इंशाल्लाह। नहीं, ट्रिकी नहीं है, सिर्फ समझ की बात है कि आप क्या समझते हैं, आप तब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा जी, हम पिछली बार नहीं पहुंचे थे क्वेश्चन 9 पे। अगर बादल हो तो आज के दौर में, ये मेरे ख्याल लास्ट टाइम हमने कर लिया था, आज के दौर में कैलकुलेशन के मुताबिक महीना शुरू करना चाहिए, हदीस क्या है, अगर बादल हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, मैं ये कहूंगे मैंने, हमारी तो जी कैलकुलेशन आ गई है कि चांद पीछे निकला हुआ है तो इसलिए जो है हम तो महीना शुरू कर देंगे, हदीस में क्या है, शाबाश, 30 के बाद 30 पूरे कर लो, हदीस में क्या है, हम हदीस को लेंगे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरमाया था कि 30 पूरे कर लो फिर, तो 10-30 पूरे करें, कैलकुलेशन जो भी कहती है। अब अगर हमने वहां पे कैलकुलेशन के मुताबिक महीना शुरू कर दिया और हमने कह दिया बस कैलकुलेशन है, तो फिर तो हम टोटली कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं, फिर चांद देखने की जरूरत ही क्या है, फिर तो कभी भी चांद देखने की जरूरत नहीं, बादल हो या नहीं हो इसे क्या फर्क पड़ता। आगे और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन जी, कोई और क्वेश्चन है जिसमें किसी को कंफ्यूजन हो, जल्दी जल्दी देख लें। चलें फिर हम इंशाअल्लाह ताला रिव्यू शुरू करते हैं, माशाल्लाह सबके पास आंसर भी आ चुके हैं, किसी में कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हाँ जी, आज के दौर में, आज के दौर इसलिए लिखा है कि कैलकुलेशन तो पुराने जमाने में तो होती ही नहीं थी। आज ही आप कहते हैं ना कि कैलकुलेशन होती है, अगर मैं सिर्फ कैलकुलेशन कह देती तो आपने कहना था उस जमाने में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं थी। आज के दौर में का मतलब है कि आज जैसे लोग कैलकुलेशंस के मुताबिक महीना शुरू करते हैं और महीना खत्म करते हैं, तो क्या उसी तरह कर, अगर बादल आए हो तो हम कह देंगे कैलकुलेशन कह रही है कि पीछे चांद निकला हुआ इसलिए हम तो करेंगे, तो उस वक्त नहीं। कैलकुलेशन को तो देखना ही नहीं कि सोलली आप कैलकुलेशन के ऊपर चल रहे हैं, वो तो सही है ही नहीं है। वो तो वाज़े हदीस भी हमने पढ़ ली थी कि हम हिसाब किताब वाले लोग ही नहीं हैं, चांद देखना ज़रूरी है। ठीक है, चलें जी। नहमदु व नसल्लि अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैलकुलेशन कहाँ देखेंगे? कैलकुलेशन से मदद ले सकते हैं, कैलकुलेशन से मदद ली जा सकती है कि हाँ भाई कैलकुलेशन कहती है कि चांद है कहीं, तो हम उसकी कोशिश फिर और ज्यादा करेंगे कि हाँ हमें नजर आ जाए चांद। ठीक है, या अगर कैलकुलेशन कहती है कि बिल्कुल है ही नहीं चांद, तो फिर आप थोड़ा सा देखा हमने, हमने कहा कि नहीं कैलकुलेशन के मुताबिक भी चांद आज है ही नहीं है, आज इज बॉर्न ही नहीं है, तो वो मदद हमारे लिए हेल्प हो जाती है ना एक तरह से। ठीक है, अच्छा जी। मुझे एक मिनट सिर्फ दीजिए, इंशाअल्लाह ताला। चांद है तो कोशिश करें ना देखें तो छोड़ दें, ना दिखे तो छोड़ दें। हाँ जी, कोशिश तो पूरी करेंगे जाहिर है, उसके बाद चांद देखने। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन आपको इस तरह हेल्प कर सकती है कि अगर कैलकुलेशन कह रही है चांद बिल्कुल ही नहीं है, अब आप लगे हुए हैं कोशिशें करने, तो एक हेल्प मिल जाती है। और ऐसा नहीं कि आपने कैलकुलेशन में देख कर लिया उसके बाद चांद देखने की जरूरत ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है। आप मुझे बताएं कि आप फर्ज रोजा रखते हैं तो नियत कब करते हैं, कब नियत करेंगे? अब जैसे फर्ज रोजे आ रहे हैं कि मैंने सुबह रोजा रखना है, तो कब नियत करते हैं आप लोग? खुद बताएं कब नियत करते हैं? रात से ही कर लेते हैं बस, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल रोजा शुरू हो जाए, जैसे मसलन एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसमें, हमारे यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है यूएस में कि रात रात तक 12-1 बजे तक जनाब वो मस्जिद वाले बता ही नहीं रहे कि कल रमजान शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा, लोग सो जाते हैं। ठीक है, सो गए, सुबह उठे, घूमते फिरते कहीं गए तो वहां पता चला वो आज तो रोजा है। अब वो नहीं पता रात को 1 बजे कॉल आई थी, रात के 3 बजे कॉल आई थी, तो हम कहते हैं ओ हमने तो सुबह से कुछ खाया नहीं, चलो अब मैं रोजे की नियत कर लेती हूँ, तो नहीं अब हो सकती। समझ आ गई अब बात? ये अब बात क्लियर हुई है या नहीं कि अगर आपने पहले से नहीं नियत की हुई तो फिर अब नहीं कर सकते? अगर आपने ये नियत कर ली कि कल का मेरा रोजा है और या कल अगर रोजा हुआ तो फिर मेरा रोजा है, तो फिर है। ये नहीं है कि आप फर्ज रोजे को रोजा स्टार्ट भी हो जाए तो उसके बाद फिर आप नियत करें, वो नहीं हो सकता। या आप पाक नहीं थे, आपने उसके बाद रोजा शुरू हो गया, उसके बाद आपने देखा कि ओ सुबह से तो मैं साफ सुथरी ही हूं, तो अब मैं जल्दी से ऐसा करती हूँ मैं नहा लेती हूँ और बस मेरा रोजा शुरू, मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो अब 8-9 बजे आपने सोचा नहा धो के आपने कहा कि अब तो मैं पाक हो गई हूं, तो बस ठीक है कोई बात नहीं, सहरी के बगैर का ही मैं रोजा रख लेती हूँ, तो अब नहीं रख सकते, अब नहीं कर सकते रोजा, इसके लिए पहले से आपकी नियत होनी चाहिए। क्लियर और नॉट? चले अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे। जब आ जाए रिव्यू की तरफ, हमने मेरा ख्याल है यहाँ तक 907 हदीस तक किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, फिर हमारा ये नहीं ख़त्म होगा। आप लोग यहाँ पे ही कोशिश करें कि लोग पैल टॉक पे आ जाएं और यहाँ पे ही जवाब दें। जिसने वलीमे की दावत को कबूल नहीं किया, इनकार कर दिया, तो ये क्या कोई गुनाह की बात है? ये क्या बुरी बात है? हाँ, उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हुआ कि दावत वलीमा पे बुलाया जाए तो उसे आना चाहिए। यानी ये इतनी बड़ी बात है। लेकिन अच्छा ये मुझे बताएं कि आज के वक्त में अगर आप ये देखते हैं कि वलीमा दावत है, लेकिन आज भी कई इतनी खुराफात है वलीमों की दावत पे भी, कि इंतहाई लाउड म्यूजिक और डांस और वो और फलां क्या क्या होता है, तो क्या उसको भी इनकार नहीं कर सकते? उसका बताएं। कर सकते हैं बिल्कुल। ऐसी मजलिसें, अब देखें दावत वलीमा भी समझ लेना कि फिर क्या है, ऐसी मजलिसें जहां पे बिल्कुल अल्लाह की नाफरमानी हो रही है खुल्लम खुल्ला तौर पे, तो वहां पे कैसे जा सकते हैं? वो तो फिर वो वाली मजलिस ही नहीं है जिसको दावत वलीमा कहा गया कि वो जो सुन्नत के मुताबिक है। क्या उसमें है ही गुनाह? ही गुनाह शुरू से आखिर तक होता है। एंटर होते ही आपके कानों में जो म्यूजिक शुरू होता है और उसके बाद नाचना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद क्या क्या कुछ नहीं होता, तो ऐसी दावत पे अगर बुलाया जाए तो हाँ आप इनकार कर सकते हैं। मगर जो सुन्नत के मुताबिक एक खाने के लिए बुलाया जा रहा है वलीमे के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। फिर हम हाँ एक बात पे डिस्कस कर रहे थे और मैंने उसको कहा था भी आप लोगों को कि कोई भी इस चीज़ को माइंड ना करें कि तोहफा मांग के लेना क्या दुरुस्त है, कि तोहफा मांगा जाए लोगों से। इस्लामी अखलाक हमें क्या कहते हैं? दुनियावी अखलाक में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस्लामी अखलाक तो हमें मांगना किसी से क्या बताया गया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, राइट? यानी मांगने वाले हाथ से बेहतर है देने वाला हाथ। और अगर हम हर एक अपने उस पे कार्ड पे लिख लेंगे कि नहीं आप बॉक्स गिफ्ट ना लेकर आए, तो इसका मतलब क्या है कि गिफ्ट तो लेकर आए लेकिन बॉक्स वाला नहीं लेकर आए, कैश लेकर आए, नहीं फिर तो नाफरमानी नहीं, जरा मजबूरी तो अलग बात होती है। तो उसमें क्या है, मैं समझती हूँ कि लोग कहते हैं कि अगर लोग बेफायदा चीजें ले आएंगे तो उससे बेहतर है कि हम ऐसा कह दें कि आप कैश लें। तो अगर कोई बेफायदा चीज लाए, फायदा मंद चीज लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि बकरी का खुर भी कोई हमसाई दूसरे को दे दे तो वो भी उसको हकीर ना समझे। तोहफे में, हदीये में उसको बकरी का खुर भी दे देना तो वो उसको भी हकीर ना समझे कि ये क्या मुझे दे दिया। वो अब आपकी बात है कि आपने उसको जो है आपके वो काम आने वाली चीज है या नहीं है या क्या है, मगर जो भी कोई सुई भी तोहफा दे देता है वो तोहफा है, बस वो हदिया है। हदिये का समझ नहीं आती कि हदिया क्या होता है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन भी लोगों से ये होती है कि भाई महंगे महंगे तोहफे हमें ला के दो, अब कैश देंगे तो अब कितना कैश देंगे? जिसने दो तीन शादियों पे जाना हो एक महीने में या एक सीजन शुरू हो रहा है, मुझे बताएं, वो तो बेचारा फिर शादियां ही भुगताता रहेगा और तो कुछ नहीं कर सकता फिर, राइट? तो इस चीजों को भी खास तौर पे हम जो कुरान और हदीस के पढ़ने वाले हैं उनको ये चीजों को समझना चाहिए कि अंधों की तरह उस रो में ना बह जाया करो, जैसे ये गैर मुस्लिम है कि वो अगर अपने कार्ड पे ये लिखते हैं तो हमने ही लिखना। हमारे मुल्कों में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये चीज नहीं है, मगर वहां पे सलामियां ही दी जाती हैं, कैश ही दिया जाता है। कोई समझदार होगा तो कैश दे देगा, जो नहीं नहीं देना चाहता या जिसकी पॉकेट इतनी नहीं है, जो इतना नहीं अफोर्ड कर सकता, वो कोई तोहफा भी दे दे तो कोई हर्ज नहीं है। तोहफे को अच्छी तरह खुशी के साथ कबूल करें, वो तोहफा ही है, उसको ये तोहफा ही समझ के लें। ये ना समझें कि इसी पैसों से हमने अपने फंक्शन का खर्चा निकालना है, मेरे इतने इतने बन जाएं। कितने लोग बुलाए हैं मैंने? 100 लोग बुलाए। 100 लोग 100-100 डॉलर तो देंगे, 100 डॉलर 100 लोगों ने दिया तो मेरे इतने बन जाएंगे, इतने का हॉल का खर्चा है, चलो इतना खर्चा तो यहाँ से निकल जाएगा। तो हम तो भीख लेके वलीमे कर रहे हैं, तो जरा कम कर लें आप खर्चा, क्या जरूरत है इतना लेविश करने की? कि अगर आपसे नहीं अफोर्ड हो रहा तो आपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए कैसा कैसा वलीमा किया, जरूरी तो नहीं है कि आप इतना ही बड़ा वलीमा करें जिसके अंदर, या इतना ही बड़ा फंक्शन करें कि जिसके अंदर इतना लेविश हो कि आपको لوگوں کی محتاجی ہے کہ وہ کچھ دیں گے تو اس میں سے ہم نکال کے اور پھر ہم ولیمہ کریں گے، اسی کو جمع کر کے انہی پیسوں سے پھر ہم ولیمہ کریں گے، یا ہم قرضے لے لے کے. سبحان اللہ، آج یہ بھی وقت ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا، میں تو حیران ہوتی تھی لوگ کس طرح اپنے اتنے بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں، تو مجھے پتہ چلا لوگوں نے بتایا کہ آپ کو نہیں پتہ یہ قرض لے کے کرتے ہیں اور پھر قرضہ اتارتے رہتے ہیں، کریڈٹ کارڈ پہ کرتے ہیں. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں قرضہ لے کے ولیمے نہیں کیے، حالانکہ ولیمہ تو سنت ہے، ولیمہ ضروری ہے، پھر بھی قرض لے کے نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہاں قرض لیے جس وقت مہمان نوازی کرنی تھی، جو قرض لیے اس وقت جس وقت کہ آپ نے صدقہ کرنا تھا یا اور کسی، لیکن ولیموں کے بڑے لیوش فنکشن کرنے کے لیے نہیں لیے کہ نہیں اس کے اندر تو اونٹ ہی ذبح ہوں گے. اس زمانے میں بھی 100 100 اونٹ ذبح ہوا کرتے ہو سکتے تھے، جیسے قربانی کے وقت میں، آپ کو پتا عید کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہر کیا کرتے تھے اونٹ، تو کہ ولیموں پہ نہیں کر سکتے تھے، یا تو قرضے لے لے کے کرتے رہتے ہیں اونٹ ذبح اور لوگ پورے شہر کو بلا لیتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کہیں وہ حلوہ ایک بنایا جا رہا ہے، کہیں لوگوں کو کہا جا رہا ہے اپنی اپنی چیزیں لے آؤ اور وہاں پہ ولیمہ ہو رہا ہے. کیسے ولیمے تھے، کتنے سادہ، اور اسی لیے ان شادیوں میں برکتیں تھیں. آج قرضوں کے ساتھ بات شروع ہوتی ہے اور لوگوں کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے پیسے لے کر آئیں گے، تو ہمارے کتنے اکٹھے ہو جائیں گے اور کتنے لوگ ہم بلا رہے ہیں اور کتنا ہمارا خرچہ ہوگا، تو یہاں یہاں اتنی اتنی کیلکولیشن. اللہ اکبر. تو کسی کا دل چاہے، جو بھی دل چاہے، جو نہیں دل چاہے، دے شوڈ ناٹ رائٹ اینی تھنگ آن کارڈ. آف کورس، بالکل، جس کی جو دل چاہے، نہیں بھی تحفہ لے کر آ رہا تو وہ بھی ثواب بسم اللہ. آپ کیا تحفوں کے لیے ولیمے کرتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے نا کہ ہم تحفوں کے لیے کرتے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ کسی کے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ جو اپنے گھر میں دعوت کریں اور لوگوں کو، کل کو میرا خیال یہ بھی ٹرینڈ شروع ہو جائے گا کہ ہم دعوت میں بھی لوگوں کو میسج کرتے ہوئے کہہ دیا کریں گے کہ دیکھیں باکس گفٹ نہ لائیے گا، کیونکہ میرا تو اتنا دعوت پہ خرچہ ہوا، 100 200 ڈالر لگ گیا، تو اب جو ہے آپ لوگ کوئی پیسے ہی لے کر آئیے گا. چاہے گرل سائڈ ہے، بوائے سائڈ ہے، کوئی سائڈ بھی ہے، تحفہ مانگنا ایک بری بات ہے. اور جو تحفہ دے دے، جیسا بھی دے، جو تحفہ بھی دے، وہ قابل احترام ہے. کیا اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اس کو حقیر مت سمجھو. اللہ اکبر. ہم نے تو وہ گو کے بل میں بھی دوسرے داخل ہو رہے ہیں تو ہم نے وہاں پہ گھس جانا تھا. لوگ کہتے ہیں اتنے ڈبے ہمارے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، فالتو گفٹ جمع ہو جاتے ہیں. ہوتے رہے فالتو گفٹ جمع. اب وہ کسی نے گفٹ دے دیا تو ٹھیک ہے، آپ صدقہ کر دیں، کسی کو دے دیں، کچھ بھی کریں، اس کا واپس کر دیں، جو بھی کریں. آپ نے نہیں اس کو کہنا کہ تم یہ کیوں، یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں وہ چیز لا کے دو جو پیسے ہیں، ہم پیسوں کو یوز کریں گے. اول تو ہمیں خود ہی اتنا عقل مند ہونا چاہیے کہ ہم چلو کیش ہی دے دیں، اگر کوئی نہیں دے سکتا تو جو بھی دے دے. ہاں جی بالکل، جو گفٹ گیونگ سائڈ ہے، بڑی اچھی آپ نے بات کی، ان کو بھی اچھی چیز ہی دینی چاہیے. یہ تو ہمیں سب سے پہلے ہی دیکھنا چاہیے. مگر کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی نہیں افورڈ کر سکتا، اگر کچھ دے ہی نہیں سکتا کیش تو کیا دے، پھر وہ آئے ہی نہ، ظاہر ہے. یہی آپ کا کہنے کا مقصد ہے نا کہ واک کے گفٹ نہ لانا، دوسرا لانا، تو پھر وہ آئے ہی نہ. جی اچھا چلیں، اب یہ بھی بات ہماری ہو گئی الحمدللہ، اور ہم نے یہ بھی بات کر لی تھی کہ اس میں غریبوں کو بھی بلانا چاہیے. ورسٹ دعوت ولیمہ وہ ہے جس کے اندر کہ صرف امیروں کو دعوت دی جاتی ہے. اور اگر ہماری دعوتیں دیکھ لیں، تو ہر طرح کی دعوت دیکھ لیں، اس کے اندر شادیوں پہ تو مجھے یاد ہے ہمارے ملک میں تو ایسا حال تھا کہ اگر ٹینٹ باہر لگے ہوتے تھے، اتنی گلٹی فیلنگ ہوتی تھی کہ بعض غریب لوگ ٹینٹ کے بیچ بیچ میں سے ہاتھ نکال نکال کے کہتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی چیز دے دو کھانے کی، اور لوگ ان کو ڈانٹتے تھے جو گھر والے ہوتے تھے کہ آپ لوگ کیوں اس طرح سے ان کو نکالتے تھے وہاں سے. کیونکہ آج تک مجھے یاد ہے کہ وہ ٹینٹس کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے نا، وہاں سے لوگ ہاتھ ڈال ڈال کے کہہ رہے ہوتے تھے. استغفر اللہ، ہم سے کتنا سوال ہوگا، کتنا سوال ہوگا. اور ہم کھا رہے ہوتے تھے اور وہ دیکھ رہے ہیں غریب لوگ. فرمایا بدترین ہے، کیوں ان کا نہیں خیال آتا؟ اس لیے کہ ان سے کیا ملنا ہے، یہاں پہ تو ہم نے کسی کو کھلانا تو کل کو وہ بھی ہمیں بلائیں گے، یہاں سے سلامیاں ملنی ہیں، یہاں سے تحفے ملنے ہیں، یہ ہماری حیثیت کے لوگ ہیں، ان کو بلانا ہمارے لیے فخر کی بات ہے. دوسروں کو کیوں بلائیں، ان کو بلانا کیا ہے، ان کو بھی گھسا لیں اپنی شادیوں میں. تو ان کو زبردست دھکے دے کے اور وہاں سے ڈانٹے पिला पिला के भिजाया जाता था। आप नोट कर रहे हैं अपनी ये हदीस पढ़ के कि हम कितनी दूर हैं सुन्नत से, कितनी दूर है और कितनी ज्यादा हमें फिक्सिंग की जरूरत है। हम सबको एज अ सोसाइटी, हम सबको जरूरत है, पूरा माशरा जरूरत है कि हम सब चेंज करें अपनी इन चीजों को। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि क्या औरत किसी ऐसी वजह से जो कि वो समझती है कि शोहर के अंदर उसको बुरी लगती है, या शोहर के अंदर वो नापसंदीदा है, या शोहर उसके साथ उसके जिस्मानी हकूक पूरे नहीं कर सकता या नहीं करता, तो क्या वो डिमांड कर सकती तलाक इस बेस पे? यस या नो? जी, एक दफा मेरे पास एक मसला आया था, किसी का बताया था शादी हुई थी और वो आदमी किसी काबिल नहीं था, तो क्या फिर वो उसकी जो अब बेचारी जिसकी शादी हो गई है, जाहिर है पहले तो नहीं ये बातें पता होती, तो क्या वो डिमांड कर सकती है तलाक? हाँ जी, कर सकती है, ये बेस काफी है कि वो तलाक डिमांड करे। ठीक है, इसी तरह अगर किसी ने तलाक बाइना दे दियो, अब बाइना समझ है सबको या नहीं? तलाक बाइना, जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ होनी चाहिए, तलाक बाइना दे दी हो तो क्या उसके बाद उससे निकाह किया जा सकता है? उसी पिछले शोहर से निकाह हो सकता है? नहीं। किस कंडीशन पे होगा? किस कंडीशन पे होगा? ये सबके जवाब नहीं आ रहे जितने लोग क्लास में बैठे हैं। दोबारा शादी के बाद, और दोबारा सिर्फ शादी के बाद नहीं बल्कि शाबाश, ताल्लुक होना चाहिए, ताल्लुक होना जरूरी है आफ्टर मैरिज। कई दफा ऐसे भी हो सकता है दूसरी जगह शादी हुई है और उसके बाद बस उसने तलाक दे दिया। जी, उसके साथ ताल्लुक होना जरूरी है। नहीं, न्यू हक मेहर की नहीं है बात, निकाह हो और दूसरे के साथ रिलेशनशिप हो तो उसके बाद। कितनी स्केरी बात है ये। इसी वजह से मर्द को डराया गया कि तुम देखो कि अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर क्या हो सकता है। जी अच्छा, पहली और दूसरी तलाक, इसके बाद औरत के पास क्या ऑप्शंस हैं? ये मेरे ख्याल में मैं उस पर पूछ लेती हूँ, आपको लगता है टाइपिंग में मुश्किल हो रही है। पहली, जी कुलसुम आप बताइए, पहली और दूसरी तलाक के बाद औरत के पास क्या ऑप्शंस हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहली और दूसरी तलाक के बाद, मैंने अनम्यूट किया है आपको। जी राहत, आप बताइए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये पहली और दूसरी तलाक के बाद कह लो कि दोबारा अपने हवद के पास रह सकती है। अच्छा, क्योंकि जब तक तीन तलाकें हो ना जाएं तब मतलब हो सकती है, नहीं तो एक और दो तलाक हो तो वो मतलब अपनी इद्दत पूरी उसी घर में रहे, बाहर नहीं जाए और इद्दत पूरी करे अपने हामद के पास, तो हलाल है।
इद्दत पूरी करे, अच्छा इद्दत पूरी करे, इद्दत की दौरान और इद्दत के बाद मतलब क्या ऑप्शंस है उसके पास?
वही मतलब पीरियड का देखा जाता है ना, जैसे कहते हैं कि पीरियड का देखा जाता है, एक पीरियड दूसरा।
वो सही है, वो तो इद्दत हो गई ना, इद्दत के दौरान उसके पास क्या ऑप्शन है या इद्दत के बाद क्या इख्तियारात हैं इस औरत के पास कि क्या कर सकती है? ये क्या खामिन के साथ रह सकती है, नहीं रह सकती, क्या उसके
जी
बाद
पहले हामन दो इद्दतें पूरी करें जो दो तलाकें हैं, फिर पहले शोहर के पास आ सकती है, फिर तीसरी तलाक अगर मिल जाए तो इद्दत पूरी करके फिर मतलब फिर वापस नहीं जा, फिर पहले हामद के पास वापस नहीं जाते जब तक कि दूसरा निकाह ना कर ले उसके साथ।
वो तो आप तीसरी पे आ गई ना।
अच्छा, तीसरी पे मैंने बोला है ना, तीसरी तलाक का मतलब ये है। तो पहली मतलब पहली तो दो तलाकें जो है वो अपने हामद के घर गुजारे जब तक कि तीसरी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी तलाक नहीं हो जाती तो अपने वालदैन के घर भी नहीं जा सकती, मतलब जब तक के दो तलाकें पहले जो दो तलाकें एक और दो जो जैसे कह देते हैं तो वो दो इद्दतें दो तलाकें अपने हामद के घर ही गुजारे।
ठीक है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिफ्रेज करें नफीसा, आप इस तरह से आप इसको बताएंगे ये क्या ऑप्शन?
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں یہ ہے کہ اگر تین حیض کے اس سے پہلے وہ رجوع کر سکتی ہے بغیر نکاح کے, لیکن اگر 3 مہینے گزر گئے اور اگر ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاق ہوئی ہے تو وہ پھر دوبارہ نکاح کر سکتی ہے نا, اور ادر وائز تیسری جو طلاق ہو جائے گی اس کے بعد وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی, نہ وہاں پہ رہ سکتی ہے فوراً.
جی جی,
2 کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے آفٹر 3 پیریڈ کے بعد نا. اور اس
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن, کیونکہ سر آ چکے ہیں. میں تھوڑا سا اس کو آپ کو بتا دوں کیونکہ میں ایسے کوسچنس دوں گی ٹیسٹ میں, یہ آپ یاد رکھیں. پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد عدت کے دوران یہ لکھ لیں, عدت کے دوران آدمی رجوع کر سکتا ہے. عدت گزر جائے تو عورت کے پاس کیا آپشن ہے, چاہے تو اسی آدمی سے دوبارہ نکاح کر لیں, چاہے تو کسی اور سے بھی دوبارہ کسی اور بندے نئے بندے سے نکاح کر لیں. تو یہ آپشنز ہیں, یہ آپ کو مجھے بتانا ہے کہ کیا آپشنز ہیں, اس کے پاس کیا اختیارات ہیں, وہ کیا کیا کر سکتی ہے. پچھلے کے پاس جا سکتی ہے کہ نہیں, نیا نیا نکاح کر سکتی نہیں, پچھلے کے پاس جانا ہے تو کب تک جا سکتی ہے, پچھلے کے ساتھ نیا نکاح کرنا ہے تو کب کر سکتی. یہ آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. چونکہ اب کلاس سٹارٹ ہو گئی تو نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ یہیں سے سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.